سلیم صلاۃ وسلام علیکم رسول اللہ.
میرے بھائیوں اور بچوں, عزیز طلبہ, دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے علم بہت ضروری ہے.
بے شک.
اس لیے کہ جب علم ہوتا ہے تو اچھے برے میں پہچان بھی ہوتی ہے, اور جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے تو اس کو حاصل کرنے کی طرف آپ کو خواہش بھی ہوتی ہے, اور یہ پتہ چل جاتا ہے یہ چیز بری ہے تو اس سے بچنے کی تمنا ہوتی ہے. اب آپ یہاں شطرنجی بچھی ہوئے بیٹھے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے. اگر ایک چھوٹا سا بچھو اس کے اندر کہیں بیٹھا ہو نیچے, آپ کو علم نہیں ہے تو کتنے اطمینان سے بیٹھے, اور علم ہو جائے کہ نہیں یہاں بچھو ہے تو اب آپ کی کیفیت کیا ہے, آپ بتائیے. وہاں آپ بیٹھے رہیں گے, اچھل کر کے آپ چلے جائیں گے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچھو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے, اس لیے علم نہیں تھا تو اطمینان سے بیٹھے تھے, علم آ گیا تو آپ نے بچنے کی کوشش کر دی. اب آپ کو کسی طرح علم ہو گیا کہ شطرنجی کے نیچے سونے کا بسکٹ, اب آپ کو وہاں سے کوئی اٹھائے تو آپ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, انتظار کریں گے لوگ چلے جائیں تو میں جلدی سے لے کر کے چلوں, سمجھ گیا. آخر وہی شطرنجی, وہی جگہ, وہی آپ ہیں, بچھو کا نام سن کر کے اچھل کے بھاگے اور سونے کا نام سمجھ کر کے چپک کے بیٹھ گئے. واٹ از ریزن, وجہ کیا؟ علم. اچھی اور بری چیز کا علم ہو گیا تو آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے بالکل پرفیکٹ ہو گئی. معلوم ہوا بچھو تو آپ کی ایکٹیویٹی اچھل کر کے بھاگ گئی, اور معلوم ہوا سونے کا بسکٹ ہے تو آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ ایک اچھی چیز ہے میرے لیے فائدہ ہے تو جم کر کے بیٹھے. یہ ہے علم کی ایک مثال میں نے دی. اس دنیا کی زندگی میں جب تک صحیح علم نہیں ہوگا, اچھائی کو برائی سمجھ لے گا اور برائی کو اچھائی سمجھے گا, یا پھر برائی اور اچھائی کو کچھ نہیں سمجھے گا, اور وہ اپنی زندگی کو یوں ہی جانوروں جیسے گزار گا. بلکہ جانوروں میں بھی اللہ ہمیں ایک علم کا حصہ رکھا ہے. جانور کو آپ کھیت میں چھوڑ دیجئے, وہ گھاس چرنے سے پہلے جانور اسے سونگتا ہے, پہلے سونگے گا, سونگنے سے اس کو علم ہو جاتا ہے یہ گھاس کھانے کے لائق نہیں ہے, ہری بھری وہ بھی ہے لیکن ہٹ جاتا ہے, اور سوکھا ہوا پتا ہے اس کو سونگ لیا, اس کو علم ہو گیا یہ میرے لیے کھانے کی چیز. ہر ہری بھری گھاس کو جانور نہیں کھاتا, سونگ سونگ کر کے کھاتا ہے, سونگتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے, کھانے کا چارہ ہے وہ کھا لیتا ہے. یہاں بہیا کا درخت ہوتا ہے,
ہاں ہوتا,
بے شرم کے جھاڑ ہوتے ہیں, کتنے ہرے بھرے ہیں, کسی جانور کو چرتے دیکھا ہے کیا؟
نہیں.
اس کو کس نے سکھایا, کس نے بتایا کہ یہ زہر ہے, کھائے گا تو تیری صحت خراب ہو جائے گی. ہرا بھرا دیکھ کر کبھی اس کے بھوکا جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتا ہے. ببول کے کانٹے والا درخت ہے, اس کی پتیاں کھا کر کے پیٹ بھر لیتا ہے, سوکھے پتے کھا لیتا ہے. یہ ہے وہ علم جو قدرت نے اسے عطا فرمایا, لیکن اپنے بندوں کو اس نے خود ایسا علم نہیں دیا ہے, بندوں سے کہا ہے علم سیکھو.
بے شک.
جانوروں کا مدرسہ کہیں نہیں ہے, مدرسہ کس کے ہے؟
انسان.
انسان انسان کو محنت کرنا سکھایا ہے رب نے. جانور کھیتی باڑی کبھی نہیں کرتا, کھانے کو سب مل جاتا, آپ کو کھیتی باڑی کرنا ہوگا جب اناج ملے. انسان کی لائف آپ اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کا حکم دیا, تب تو اپنی صحیح زندگی بسر کر سکتا ہے. जानवर को कोई नबी नहीं आया, कोई शरीयत नहीं उतरी, कोई किताब नहीं उतरी कि आए देख देख करके इस खेत में जाना उस खेत में जाना, ये नहीं, ये सब हमारे लिए
है।
तो बगैर सीखे हुए अच्छे और बुरे का सही इल्म नहीं होता। आज इंसान इसलिए परेशान है, जिसको वो अच्छा समझता है वही उसको नुकसान देता है, और जिसको नुकसान दे समझता है और उसको करता नहीं है तो उसमें वो परेशान होता है। इसलिए मदरसों की जरूरत है।
बेशक
ये मदरसे जानवरों के लिए नहीं है, शरीयत हमारे और आपके लिए उतरी। अगर हम इस शरीयत को सीखेंगे नहीं, बच्चों को सिखाएंगे नहीं, तो जिंदगी का सही लुत्फ मिल भी नहीं सकता। सही लुत्फ क्या है? दिल का इत्मीनान। प्रॉपर्टी ये जिंदगी नहीं है, दौलत जिंदगी नहीं है, 10 रुपये जेब में है लेकिन चैन की नींद सो रहा है, वही सबसे बड़ा मालदार।
बेशक
अब करोड़ों की दौलत है, रात भर करवट बदल रहा है, शुगर हो गया है, बीपी हो गया है, कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया। हमने किसी फकीर को कैंसर होते हुए नहीं देखा क्या? आपने कुछ 5 वर्ष होता है कोई, मैंने आज तक देखा है किसी भी फकीर को कैंसर नहीं, किसी फकीर को शुगर नहीं हुआ, जो मिल गया खा रहा है, मीठा हीरा, लेकिन टेंशन नहीं है। इनकम टैक्स वाला आएगा, GST लग गई है, और ये हो गया वो हो गया, टेंशन क्रिएट होता है तो ये सब बीमारियां आती हैं। फुटपाथ पर सोने वाले को कोई टेंशन नहीं, 10 रुपया कमा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, खा करके खर्रा करके सो रहा। जिंदगी का लुत्फ, दिल का इत्मीनान और जहन का सुकून है। और इस्लाम फरमाता है कुरान की अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगो याद खुदा में तुम्हारे दिल का चैन।
बेशक
और वही याद खुदा आज लोगों को अच्छा नहीं लगता। कहाँ कितनी देर मस्जिद में जाएंगे? अगर इमाम साहब 5 मिनट भी लेट हो गए तो सेठ साहब की आंखें निकल गई। इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए, अरे क्यों? कहीं कैदखाने में थे, जेल में थे, अल्लाह के उस घर में थे जहाँ फरिश्ते तुमको दुआएं दे रहे थे, तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए रहमत उतर रही थी, वहाँ घबराहट क्यों होती है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। जहाँ चैन की जगह है वहाँ घबराहट होती है, जहाँ घबराहट की चैन है वहाँ मुस्कुराता है। ये इंसान का नेगेटिव, इंसान की नेगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग कुरान सीख करके होगी, और नेगेटिव थिंकिंग ये कुरान छोड़ करके होगी। यानी सही सोच कुरान दे रहा है और बुरी सोच कुरान छोड़ करके मिलती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ऐ लोगो जिंदगी का लुत्फ लेना चाहो तो मुफ्ती आजम की जिंदगी देखो, आला हजरत की जिंदगी देखो, गरीब नवाज की जिंदगी देखो, गौसे पाक की जिंदगी देखो, औलिया किराम की जिंदगी देखो। आज भी आप देख लीजिए ये इमाम लोग हैं, कितना कमाते हैं? 7-8 हजार की सेठ लोग चाय पान पूरे महीने में कर लेते हैं, और ये पूरी खानदान चलाते, पूरा परिवार चलाते, और फिर भी चैन से है, सुकून से है, बाइक लेके घूमते हैं, फर्स्ट क्लास टोपी है, अच्छा कपड़ा है। कौन इन्हें कहेगा कि इन्हें कोई फकीर जैसे है? जी नहीं। आज हर आलिम कैसा भी हो चैन से सोता है। मौलाना छोटा सा मकान इनका है, तनख्वाह देखिए तो छोटी सी, इतना बड़ा इदारा चलाते, लेकिन मैं देखता हूँ कि हमेशा हंसते खेलते, इतना बड़ा परिवार, कभी झगड़ा नहीं, सब भाई मिलजुल करके रहते हैं, सुकून है, कितनी नाम है। जिंदगी और लाइफ का मजा लेना है तो दिल को सुकून दो, और दिल का सुकून न टेबलेट से मिलता है, न इंजेक्शन से मिलता है, हाँ सिर्फ ये डॉक्टर लोग स्लीपिंग डोज दे करके सलाते और जैसे ही जागता है फिर वही पेशेंट। कोई टेबलेट आपको सुकून नहीं दे सकती है, एक ही सीरप है मोहब्बत रसूल, और एक ही गजा है याद खुदा। ये दो चीज अगर खाते रहोगे मस्त जिंदगी गुजरेगी। और यहाँ की जिंदगी चली जाएगी, अरे कब्र में भी मस्त सोते रहोगे, नम कनौम के औरूस जैसे दूल्हा दुल्हन मजे से सोते हैं आनंद लेते हुए तुम भी सो जाओ। और जब क़यामत में उठोगे तो फरिश्ते सलाम करेंगे, हत्ता इज़ा जाऊहा फतहत अबवाबुहा वकाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम हिबतुम फ़ादखुलूहा दाखिलीन। हश्र में जब पहुंचोगे तो जन्नत का दारोगा जो होगा हेड डाक डिपार्टमेंट वो कहेगा सलामुन अलैकुम हिबतुम फ़ादखुलूहा दाखिलीन अस्सलामु अलैकुम, जाइए जन्नत के रेस्ट हाउस में हमेशा रहने के लिए। कोई दुनिया का रेस्ट हाउस है ऐसा नहीं है कि जो आपको परमानेंट रहने की इजाजत हो, एक दिन दो दिन चलिए आपका टाइम खत्म हो गया, लेकिन जन्नत का रेस्ट हाउस मुस्तफा ने ऐसा बनवा दिया है फद खलुआ खालिदीन हमेशा रहने के लिए।
बेशक
इतना अच्छा दीन और मजहब है, उसी को सिखाने के लिए ये तीन का शेर है, ये मैली कुचैली दीवारें, ये मामूल शतरंगी, उस कालीन से बेहतर है जो राजाओं के और नवाबों के महल में।
बेशक बेहतर
इस कालीन पर चलने वाले पर अल्लाह की रहमत उतरती है, फरिश्ते आते हैं इन बच्चों के सर पर अपना नूरानी पर बिछाते हैं, और सिर्फ सर पर नहीं ये फरिश्तों के बाजुओं पर अपना पैर रख करके ये बिचारे टोपी पहने हुए मामूली कपड़ा पहने हुए, लेकिन रब के नजदीक इनकी इज्जत ये है कि जब ये इल्म दीन के लिए क्लास की तरफ चलते हैं तो फरिश्ते अपना पर बिछाते
हैं।
इससे बड़ी और इज्जत क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, इस मदरसे की तरफ हर मुसलमान को अल्लाह ताला मुतवज्जा फरमाए। मैं यही दुआ देने के लिए आया हूँ, और ये हमारे मौलाना
हाफिज़ राग़िब साहब,
राग़िब साहब अल्लाह ताला इन्हें इनको रग़बत अता फरमा दी है और आपको इनकी तरफ रग़बत अता फरमा दे, और ये हमारे इमाम साहब और मौलाना लोग इनके दस्ते बाजू हैं, अल्लाह सबके इल्मी फैजान को आम काम फरमाए, और मैंने जो कुछ कहा है अल्लाह ताला इसे हर मुसलमान को इसे मदरसे की इयानत की तरफ मुतवज्जा फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم بالصلاة والسلام.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون.